राम राम हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी जय जय राधा रमण गिरिधारी गिरिधारी श्याम बनवारी हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कितना अच्छा होता अगर आप सब लोग अच्छी तरह से गाते हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे हरे करहवन धाम की श्री करहला की श्री करहरपुर की श्री चंपकलता देवी की श्रीमती राधा रानी की श्री कृष्ण भगवान की श्री वृंदावन धाम की जय जय श्री राधे नहीं 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 अभी तक सबकी पुकार नहीं आई उसके अंदर। हम लोग गाते नहीं है, हमको पुकारना है धाम में आकर, क्योंकि यहां पर कैसा है लोकल कॉल है, लॉन्ग डिस्टेंस कॉल नहीं है, यहीं पे सब विराजते हैं राधा कृष्ण और सखियां आपकी पुकार सुनने के लिए बैठे हुए हैं, आपको पुकारना चाहिए। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। श्याम श्री वृंदावन धाम की जय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तभी आप सबका श्री करहपुर में स्वागत है। आप ऐसे यहाँ पर पहले कितने लोग आए हुए हैं? हरे कृष्णा, बहुत कम लोग आए हैं। बहुत ही रमणीय स्थान है, आप देख रहे हैं इस सुंदर घने वृक्षावली के छाया में आप बैठे हैं। जरा ऊपर देखिए, ये कदम खंडी है, ये कदम का वृक्ष है, उसके आगे भी कदम का वृक्ष है, बीच में जो सामला सा वृक्ष है ये नीम का है, आगे ही बहुत सारे कदम के वृक्ष हैं। तो इस वन को कदम खंडी भी कहते हैं और इसका इतिहास भी ऐसा है कि यहाँ पर पूरे घने कदम का जंगल हुआ करता था। और कदम का पेड़ किसका स्वरूप है? कदम का पेड़ राधा रानी का स्वरूप है। और तमाल का पेड़ किसका स्वरूप है? कृष्ण भगवान का स्वरूप है। बेल का पेड़ किसका स्वरूप है? बरगद का पेड़ किसका स्वरूप है? शिव जी का स्वरूप है। ठीक है, तो ये सारे जो वृक्ष हैं ये या तो स्वयं राधा रानी हैं नंबर वन, या तो ये ऋषि मुनि देवतागण हैं, महात्मा जन हैं जो यहाँ पर वृक्ष के रूप में भजन कर रहे हैं, या तो ये सब कल्प वृक्ष हैं। कल्प वृक्ष का मतलब होता है कि जिसके सामने आप खड़े होंगे और मन में कोई भी भगवान की सेवा में इच्छा करेंगे वो तुरंत उसको पूरी कर देगा। ये सब कल्प वृक्ष जो हैं वो गौलोक धाम के हैं, जो भगवान के धाम की यहाँ की शोभा बढ़ाने के लिए वहाँ से यहाँ आते हैं। और इस वृक्षों में ऐसी शक्ति होती है कि वातावरण के अंदर जो चेतना होती है उसको ग्रहण कर लेते हैं। जो भी लीला होती है दृश्य अदृश्य, जो हमें दिखाई पड़े या नहीं पड़े, वृक्ष जो है वे सबका अवलोकन करते रहते हैं। इनका ऐसा भाग्य है। वैसे उनको सबसे निचली योनि मानी गई है, लेकिन ब्रज के वृक्ष उस प्रकार की योनि में नहीं आते। ब्रज के वृक्ष कल्प वृक्ष है और यहां पर भगवान की नित्य लीला है। ऐसा नहीं कि कभी हुई थी 5,000 साल वर्ष पहले और अभी तो इतिहास में हो गया, ऐसा नहीं है। 5,000 वर्ष पहले जो हुई थी उसको प्रकट लीला कहते हैं और उसके पीछे है अप्रकट लीला जो हमको दिखाई नहीं पड़ती, और उसके पीछे है नित्य लीला जो गौलोक धाम में चलती रहती है। और इसी स्थान पर भी निरंतर भगवान की लीला चलती रहती है। तो उसके लिए संत लोग क्या कहते हैं? ब्रह्मा जी कहते हैं, प्रेमांजन चुरित भक्ति विलोचनेन संतः सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति। कैसे दर्शन करना है? जब आंखों में प्रेम का अंजन होगा, हृदय प्रेम से भरा होगा, तो उस स्थिति में इन लीलाओं का दर्शन होगा। ठाकुर भक्ति विनोद क्या कहते हैं? कभी हमें हेरा बोसे क्या श्री वृंदावन, विषया छाड़िया खबे शुद्ध हबोई मन, तभी हमा हेरा बोसे श्री वृंदावन। श्री वृंदावन का दर्शन कब होगा? एक तो कथा श्रवण के माध्यम से होगा, वाणी से, शास्त्र वाणी से, संतों की वाणी से होगा, और एक होगा जब हम विषय वासना छोड़ेंगे, भगवान का भजन करेंगे, विषय वासना छोड़ देंगे, हृदय शुद्ध होगा, मन शुद्ध होगा, आत्मा शुद्ध होगी, सब जो आवरण है उससे मुक्त हो जाएंगी, खास करके अहंकार का आवरण जो है उससे मुक्त हो जाएंगी। तो उसी क्षण तत्क्षण ये जो लीला चल रही है वो आपको नजर आएगी। ऐसा नहीं कि तभी वो लीला आरंभ होगी, ऐसा नहीं है, वो लीला चल ही रही है, खाली पर्दा जो है वो हटाया जाएगा आपके सामने से। इसलिए हम भगवान के धाम में आकर प्रार्थना करते हैं कि हमें वो भक्ति दे दो। इसलिए हम लोग यहाँ पर गाते नहीं हैं, हमको यहाँ पर पुकारना चाहिए। क्योंकि ठाकुर जी यहाँ पर विराजते हैं, राधा रानी विराजती हैं और ये उनका धाम है और यहाँ पर वो सबका सबकी पुकार बड़ी आसानी से सुनते हैं क्योंकि ये कृपा भूमि है। इस भूमि के रज रज में वो शक्ति है जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं होती है। एक एक रज का कर्ण जो है इसके अंदर आप लोग हम सब लोगों को भगवान की शुद्ध भक्ति देने की शक्ति है, इसलिए रज को आप सर पे लगाओ, इसमें लोटपोट हो जाओ। प्रहलाद महाराज बताते हैं जब तक हम भगवान के धाम की और भगवान के भक्तों के चरणों की रज से हमारा स्नान नहीं करते हैं तब तक ये जो दिव्य प्राप्ति है, दिव्य प्राप्ति जो है ये नहीं हो सकती है। तो वो जो दिव्य प्राप्ति है इसको करने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हैं। ब्रज में कैसे आना चाहिए, एक भिक्षुक बनकर आना चाहिए। हमारी सारी उपाधियाँ, सारी टोपियाँ, सारे पद, सारा अहंकार, सारा गर्व, सारा जो मद है शहर का, वो सब छोड़ के आना चाहिए। जैसे कोई 50 वस्त्र पहना हुआ है तो स्नान करने के लिए क्या करना पड़ता है, सभी वस्त्रों को उतारना पड़ता है। उसी तरह से अगर आपके आत्मा का स्नान कराना है प्रेममय भक्ति से तो ये सारे वस्त्रों को उतारना होगा, आत्मा को केवल ऐसे भगवान के सामने प्रस्तुत करना होगा शुद्ध अवस्था में, तब जाकर सहारा मिलेगा, शरणागति होगी, भगवान स्वीकार करेंगे, तब जाकर हमें ये सब कुछ जो दिव्य लीलाएं हैं भगवान का उसका अर्थ समझने लगेगा और हम लोग धन्य हो जाएंगे। इसलिए आप सब लोग जाने के पहले इन पेड़ों को गले लगाइए, अपने मन की इच्छाओं को व्यक्त कीजिए। ये मत बताइए कि मेरे लड़के की शादी होनी चाहिए, मेरा लड़का ऐसे से में पास होना चाहिए, उसको मेडिकल में एडमिशन मिलना चाहिए, धन की वृद्धि होनी चाहिए, ये सब नहीं मांगना उनसे आप, केवल भगवान की भक्ति मांगना। क्योंकि वैसे दुनिया में मांगने लायक कोई वस्तु है ही नहीं, क्योंकि सब वस्तु जो आप मांगते हैं वो यही छोड़ के जाना पड़ता है ना। कोई वस्तु ऐसी है यहाँ पर जो हम अपने साथ ले सकते हैं, अपने साथ केवल वही जाएगा जो आत्मा के स्तर पर होगा और वो है भक्ति और प्रेम। जो आत्मा के स्तर पर है वो आत्मा के साथ जाएगा, जो शरीर के स्तर पर है, मन के स्तर पर है, बुद्धि के स्तर पर है और आसमान के स्तर पर है मतलब वातावरण के, वो यही रहेगा क्योंकि वो यहीं का है। थोड़ा बहुत भोग लेने का आपको लगेगा कि भोग मिल रहा है लेकिन वो भी आभास रहेगा उसका, सच्चा तो भोग नहीं मिलेगा उसका। सब चीज़ यहाँ पर मिलावट की है, मिलावट किसकी है, दुख की मिलावट है सब जगह। एवरीथिंग इज मिक्स्ड विद सॉरो, नथिंग इज प्योरली अवेलेबल। इसलिए सब लोग पुकारो यहाँ पर आके, ठाकुर जी को पुकारो, राधा रानी को पुकारो। जो राधा रानी का नाम पुकारता है उसके पीछे पीछे ठाकुर जी आते हैं, सुनते हैं वो क्या पुकार रहे हैं, मेरे प्रियतमा का नाम पुकार रहे हैं, उसके पीछे पीछे चलते हैं, उसके पीछे पीछे सुनते हैं और उसी के हो जाते हैं, उस पर कृपा कर देते हैं। इसलिए दिल खोल के आलस्य को, थकान को भूल कर पुकारिए, क्योंकि ये स्थान ऐसे दिव्य स्थान है कि यहाँ पर हमें बार बार आने को नहीं मिलता है। कभी कभी श्री जी बुला लेती हैं तो उनके धाम के अंदर अंतरंग स्थान पे प्रवेश मिलता है। आज आएंगे पता नहीं और कभी आएंगे आप, हो सकता है बार बार आएंगे, लेकिन आज जब आते हैं तो ऐसे सोचना चाहिए कि हमारी यहाँ का आखिरी विजिट है। हर यात्रा के समय, चाहे आप साल में 24 बार भी आते होंगे, हर बार आपको समझना यही है, विचार करना है कि ये मेरी आखिरी यात्रा है यहाँ की, और उस प्रकार से पूछना चाहिए, पुकारना चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए। तो आप ये समझ लो कि आप परेला में लास्ट टाइम आ रहे हो, आ रहे हो फर्स्ट टाइम लेकिन समझना कि लास्ट टाइम आ रहे हो। वो जब भाव होगा तो करेला धाम का पूरा कृपा आप पर हो जाएगा। तो इसको करह वन कहते हैं और एक नाम इसका है कंकण वन। उसका कारण यह है कि यहाँ पर कंकण कुंड प्रकट है। अभी कथा होगी तो आप लोग सीधे यहाँ से जाएंगे मेरे बाई हाथ की ओर, सीधे जाएंगे तो एकदम बाहर निकलेंगे, इस आश्रम के बाहर निकलेंगे तो आपको सुंदर एक वन सरोवर मिलेगा, कुंड मिलेगा, वो है कंकण वन। हाँ, कंकण कुंड, इसलिए इसका नाम कंकण वन भी कहा गया है क्योंकि यहाँ पर रास के शुरुआत में राधा रानी को कंकण बांधा गया था, ठाकुर जी को भी कंकण बांधा गया था। इसको कहते हैं संकल्प। रास शुरू करने के पहले यहाँ पर दोनों का कंकण बंधन हुआ था। बाद में कहते हैं कृष्ण का कंकण खो गया था नाचते नाचते, तो वो कुंड में गिरा था तो उसको ढूंढ कर निकाला था सभी सखियों ने। तो ये भी इसके वन की कथा है। तो यहाँ पर इतिहास के समय बहुत सारे मुनि, श्रेष्ठ मुनिगण यहाँ पर भजन करते थे। गंधर्व भी यहाँ रहकर भजन करते थे, गाते थे। आप जानते हैं गंधर्व लोक में बहुत सुंदर संगीत का अभ्यास होता है,
स्वतः जन्म से ही होता है, अभ्यास करने की जरूरत नहीं होती है। जैसे बंदर होता है ना, ही इज बॉर्न गोल्ड मेडलिस्ट इन एथलेटिक्स, है ना। बंदर कभी ट्रेन लेता है, ट्रेनिंग जन्म से ही वो जो सब लोग मेहनत करके करते हैं जिंदगी भर, उसके बाद में गोल्ड मेडल लाते हैं, वो जन्म से एंड तक करते रहता है। सो बाय बर्थ ही इज एथलीट। हाँ, वैसे गंधर्व लोग जो है वो सब जन्म से ही संगीतज्ञ होते हैं। तो सब लोग आकर यहाँ पर भजन करते हैं। तो सब लोग करेपुर का मंत्र बोल लो, करेपुर के लिए हाथ जोड़ो सब लोग और बोलो, त्रैलोक्य मोहनायैव, त्रैलोक्य मोहनायैव, नमस्ते करहाधिभ। हे करेवन, आपके लिए नमस्कार है। गंधर्व सुखवासाय, गंधर्व सुखवासाय, विश्ववासु वरप्रद। विश्ववासु जैसे वसुओं में से श्रेष्ठ वसु हैं, वो यहाँ निवास करते हैं। गंधर्व यहाँ सुखवास करते हैं, सुख का निवास करते हैं। ऐसे सुंदर त्रैलोक्य मोहनाय, मतलब त्रिलोक को ये मोहित करता है, ऐसे ही त्रैलोक्य मोहनाय करवन को हम सब प्रणाम करते हैं। यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं, ये भी ऐसा स्थान है कि दिन भर हम लोग देखते रहेंगे तो भी समाप्त नहीं होगा, लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ बैठकर उन स्थानों को प्रणाम करेंगे और समझेंगे वो स्थान क्या है। ललिता जी के लिए भी यहाँ पर कुंड बनाया गया है, जहाँ पर ललिता जी स्नान किया करती थी, उसका नाम है ललिता कुंड। ललिता स्नपनय कुंड तीर्थराज नमोस्तुते। बोलो बोलो, तीर्थराज नमोस्तुते। ललितै सरसै दिव्यै सौभाग्य वरदायिने। ऐसे ललिता कुंड को स्मरण करने से सौभाग्य प्राप्त होता है, ललिता देवी की कृपा प्राप्त होती है। और चंपकलता देवी का ये गांव है, उनका यहाँ जन्म हुआ है, उनका घर भी यहाँ पर है। उनके पिताजी का नाम गुणभानु है और माताजी का नाम समिता देवी है। एक बात बताना मैं भूल गया आपको कि ये जितनी भी अष्ट सखियाँ हैं ये सब राधा रानी की फर्स्ट कजिन हैं। राधा रानी के पिताजी को चार बड़े और चार छोटे भाई थे और हर एक भाई को एक एक कन्या हुई और राधा रानी वृषभानु महाराज की कन्या है नौवीं। और राधा रानी की ये आठ सखियाँ जो हैं वो उनकी सब बहनें हैं और प्रेम के वश में ये सभी लोग यहाँ इसके आसपास विराजती हैं कमल दल के समान। तो गुणभानु जी की पत्नी समिता देवी की कन्या के रूप में चंपकलता का जन्म हुआ। इनकी कांति कैसी है, यानी कि कम्प्लेक्शन चंपक के फूल की तरह है, इसलिए कि चंपा फ्लावर, येलोइश कलर। इनका वस्त्र जो है वो नीलकंठ पक्षी के समान वो पहनती है। इनका कुंज जो है ये तप्त स्वर्ण वर्ण का कुंज है। हर एक सखी का एक कुंज है, जैसे प्राइवेट जहाँ पर वो कृष्ण राधा रानी को बुलाते हैं और उनकी सेवा करते हैं, उनका दे ट्रीट देम इन दैट कुंज। उसका नाम है बिसद कुंज, जो तप्त स्वर्ण वर्ण का है और इसमें सेवा होती है। इनका प्रिय वाद्य है संतूर, जिसको संस्कृत में कहते हैं स्वरमंडल। वो संतूर वाद्य में ये बहुत निपुण हैं बजाने में। इनकी प्रधान सेवा जो है राधा कृष्ण की लीला में, ये मिठाई जो होता है नहीं मिष्ठान, उसके भोजन में बहुत कुशल है। वैसे सबसे अधिष्ठात्री जो भोजन बनाने में है वो यशोदा देवी है। ब्रज में जो है नंदगांव में यशोदा मैया के नेतृत्व में भगवान के लिए भोजन बनता है, वही मेन कुक हैं, चीफ कुक। बाकी सब उनके लिए असिस्ट करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, सहायता करते हैं। उसके बाद में स्वयं राधा रानी एक श्रेष्ठ रसोईया हैं। राधा रानी को पता है ना आपको, वरदान मिला था दुर्वासा मुनि से कि इनके हाथ से जो बनेगा वो अमृत से भी अधिक स्वादिष्ट होगा, जो भी उसको खाएगा वो सब रोग से मुक्त हो जाएगा और वो हमेशा विजयी रहेगा, ऐसा वरदान उनको मिला था। तो राधा रानी भी अमृत तुल्य स्वादिष्ट भोजन बनाती है। और उसके बाद में आती है चंपकलता, तीसरी देवी जो ब्रज में सबसे स्वादिष्ट भोजन बनाती है। सभी गोपियाँ भोजन में स्वादिष्ट में बनाने में कुशल हैं, लेकिन फिर भी उसमें भी कुछ होता है ना, द बेस्ट एंड द मोर बेस्ट एंड द बेटर बेस्ट एंड द बेस्ट एंड बेस्ट, वैसा ये हायरार्की है। इसलिए आपके घर में आपको हमेशा इसी भाव से भोजन बनाना चाहिए कि हमारा रसोई घर जो है यशोदा देवी, राधा रानी और चंपक लता का है, वही यहाँ भोजन बनाती है, और जो भी घर की मालकिन भोजन बना रही है वो इनकी सेविका के भाव में बनाती है, बनाना चाहिए। आप अपने किचन में बोर्ड लगा सकते हैं, दिस इज यशोदा देवी, राधा रानी एंड चंपक लताज किचन एंड आई एम द सर्वेंट ऑफ ऑल दिस थ्री। इस भाव से बनाएंगे तो आपके अन्न में ऐसा स्वाद आएगा आप भी यकीन नहीं कर पाएंगे। दूसरी सेवा यह है कि जो भजन बनाने के बाद में, ऐसा नहीं कि एक ही सखी भोजन बनाती है भगवान के लिए, सब मिलकर बनाती है, अलग अलग व्यंजन बनाती है, वो सब भोजन को सर्विस करना, परोसना, आरोगाना कहते हैं उसको, संस्कृत की सुंदर भाषा में कहते हैं आरोगाना, भोजन को आरोगाते हैं मतलब सर्विस करते हैं, उसमें बड़ी कुशल है वो, क्योंकि ये कला है ना, ऐसे कोई सबको नहीं आता ये कला, प्रेम से, प्रेम भाव से, श्रद्धा से बनाना और श्रद्धा से परोसना, जिसको परोस रहे उसके लिए प्रेम से परोसना, हृदय में उदार भाव से परोसना, ये भी कला है, उसमें वो बहुत निपुण है, और भगवान की चामर सेवा में भी बहुत निपुण है वो, चामर डुलाया कबे हेरिबो मुख चंद्र, ये जो सेवा है चामर की, ये भी हम लोग तो ऐसे ऐसे करते हैं, प्रभुपाद जी ने बताया था, ज़्यादा उसको ऐसे 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 गोल गोल नहीं घुमाना, सीधे घुमाना, क्योंकि बहुत भक्त लोग उसको अलग अलग तरीके से घुमाते, देखा ना आपने, लेकिन प्रभुपाद जी ने बताया था कि ऐसे हवा आनी चाहिए और जो कीटक है वो उड़ने चाहिए। लेकिन ये भी एक कला है, चामर कैसे उसको झुलाते हैं, इस कला में चंपक लता देवी बहुत निपुण हैं। ये गुणभानु जी जो है, गुणभानु जी महाराज जो हैं वो बड़े पंडित हैं, बड़े विद्वान हैं वो, इसलिए चंपक लता देवी भी बड़ी विद्वान विदुषी हैं, हाँ बड़ी बड़ी पंडित हैं, और विविध कलाओं में ये निपुण हैं, पूरे ब्रज में ये ख्याति लब्ध है, मतलब शी इज वेरी फेमस इन फुल ब्रज एज गोप सुंदरी, और गान विद्या में भी बहुत निपुण है, गायन में, और द्यूत शास्त्र की महापंडिता है, मतलब क्या ऐसा है ना कि भगवान जितना भी लीला करते हैं वो सब लीला में खेल खेल में राधा रानी को हरा देते हैं, ऑफकोर्स कुछ लीला ऐसी है राधा रानी उनको हरा देती है, लेकिन एक लीला ऐसी है उसको कहते हैं पाशा खेला, जब वो चौसर लेके बैठते हैं तो राधा रानी भगवान को परास्त कर देती है, तो इस पाशा खेला के लीला में उसको कहते हैं द्यूत शास्त्र, ये खास करके राधा कुंड के श्याम कुंड के किनारे पे एक घाट है, उसका नाम है पाशा खेला घाट, वहां पर ही लीला होती है दोपहर के समय 11:48 को वहां पर स्नान होता है ऑपोजिट साइड में, उसके बाद में ये लीला खेली जाती है, उसमें चंपक लता की सहायता से भगवान को राधा रानी बड़ी आसानी से बार बार हरा देती है, क्योंकि ये द्यूत शास्त्र की महापंडिता है, स्वभाव से बहुत तेज है, इनके सामने कोई आतंकवादी टिक नहीं पाता है। सब सखा और भगवान मिलकर बहुत त्रस्त करते हैं गोपियों को, तो ललिता देवी और ये जो है ना ए वेरी स्ट्रांग। इनकी और एक कला है इनके अंदर कि मिट्टी के बर्तन बनाने में ये बहुत निपुण है, जो ब्रज की मिट्टी, ब्रज का रज जितनी महानता है उसकी गौरव है, ऐसे ब्रज के रज की जो बर्तन है वो बनाने में बहुत कुशल है, और मिट्टी के फूल भी बनाती है और पत्ते भी बनाती है डेकोरेशन के लिए। ये कहा गया है कि ललिता विशाखा के बाद में बहुत विशेष राधा रानी को बड़ी प्रिय है ये, तो चंपक लता देवी की जय हो। ऐसे चंपक लता के वन में हम लोग आए हैं, और इस वन में थोड़ा आगे जाएंगे कंकण वन के पहले एक मंदिर है, उसका नाम है द्वारकाधीश का मंदिर, तो मैंने पूछा द्वारकाधीश का क्या काम है यहाँ पर, वो तो द्वारका में रहते हैं, ब्रज में क्या काम उनका, तो ऐसे कहते हैं कि ललिता देवी ने यहाँ पर भगवान से इच्छा प्रकट की थी जब वो वापस लौट के आए कि हमको, नहीं सॉरी, जब भगवान द्वारका में थे तब बहुत तीव्रता से इच्छा प्रकट की थी कि आपको दर्शन होना बहुत जरूरी है, तो भगवान ने यहाँ पर ललिता देवी को, सॉरी चंपक लता देवी को द्वारकाधीश के रूप में दर्शन दिया था, इसलिए इस वन में द्वारकाधीश जी का मंदिर आपको मिलेगा, ठीक है। इसी गांव में काफी सुंदर दर्शन है, इस गांव में जो भगवान के प्रपौत्र हैं, ग्रेट ग्रैंडसन भगवान के पत्नी रुक्मिणी से द्वारा कौन प्राप्त हुए? प्रद्युम्न। प्रद्युम्न के पुत्र का नाम क्या है? अनिरुद्ध। अनिरुद्ध के पुत्र का नाम क्या है? वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी जो है, ये जब राजा परीक्षित राजा बने तो उनके राज्य में उनको ब्रज का राजा बनाया गया। मतलब एक होता है मेन राज्य और एक होता है अधिराज्य कहते हैं, मेन जिसका राजा राजा परीक्षित थे, सम्राट चक्रवर्ती थे वो, और उसमें ब्रज का राज्य था वो वज्रनाभ को सौंप दिया गया। और भगवान की इच्छा के अनुसार वज्रनाभ ने सभी जगहों पर विग्रहों की स्थापना की। लाडली लाल का विग्रह जो भी है वज्रनाभ ने स्थापन किया हुआ है, कृष्ण बलराम को भी उन्होंने स्थापन किया हुआ है नंदगांव का, और जितने सात विग्रह हैं और जितने अलग उसके आगे भी विग्रह हैं अलग अलग जगहों पर जो मूर्तियां बनाई है सभी वज्रनाभ ने बनाई है। इनफैक्ट वज्रनाभ ने भगवान के आदेश के अनुसार सारे ब्रज को बहुत सुंदरता से सजाया भगवान के अंतर्धान होने के बाद में। तो वो वज्रनाभ की समाधि इस गांव में है, करहपुर में, यहीं पर उन्होंने अंतिम विश्राम लिया है। और अभी यहां पर के एक मेन आचार्य थे, इनका नाम है उद्धव देवाचार्य, लेकिन उनको यहां पर घमंड देवाचार्य के रूप में जानते हैं। तो ये जो आचार्य थे ये बड़े सिद्ध महात्मा थे और वो यहां पर रहते थे, बड़े तपस्वी और बड़े सिद्ध, इस प्रकार से उनको भगवान का दर्शन हुआ करता था। तो सभी ब्रजवासियों ने मिलकर उनको विनती किया कि आप हमें रास का दर्शन कराइए, रास को प्रकट कीजिए ब्रज में। तो इन्होंने ध्यान लगाया, प्राणायाम किया, तब उनको दर्शन हुआ। तभी उनको राधा रानी का मुकुट प्राप्ति हुई और कृष्ण का मुकुट की प्राप्ति हुई। और वे कथा आती को ग्वालियर में थे पहले, और ग्वालियर में उनको ऐसा दृष्टांत हुआ जिसमें आकाश से राधा रानी का मुकुट प्राप्त हुआ और आदेश भी हुआ कि आप ब्रज में जाइए और वहां पर रास का प्रकाश कीजिए। तब इतिहास में लिखा है कि वो ग्वालियर से यात्रा करते करते मुकुट लेकर यहां पर आ गए। यहां पर भी उनको ठाकुर जी का दर्शन हुआ ध्यान में, और ध्यान में ठाकुर जी ने उनको आदेश दिया कि आपको जो अनुकूल लगे ऐसे बालक को और बालिका को गांव के मेरा और राधा रानी का श्रृंगार करना। इस तरह से दोनों को मुकुट दिए, राधा रानी की चंद्रिका दी और कृष्ण का मुकुट दिया। तो ये दृष्टांत से जगे, तो उन्होंने गांव वालों को बुलाया सब लोगों को, और एक कन्या और एक बालक को चुना। और ऐसे लिखा है कि स्वामी हरिदास जी ये बड़े संत हुए हैं वृंदावन के, स्वामी हरिदास जी, हित हरिवंश गोस्वामी जी, वल्लभाचार्य जी, हरिराम व्यास जी और वल्लभाचार्य जी, ये सब चैतन्य महाप्रभु के समय के ही प्रसिद्ध संत हैं ब्रज के, और बड़े प्रेम से एक दूसरे के साथ अंतर सांप्रदायिक संबंध रखते थे वो, बहुत सुंदर। एक संप्रदाय के आचार्य ने दूसरे की स्तुति की है, उन्होंने इनकी स्तुति की है, और बड़ा सुंदर संघ भी उनका हुआ करता था। तो स्वामी हरिदास जी ने उस लड़की का राधा रानी के मुकुट के साथ में श्रृंगार किया, और वल्लभाचार्य जी ने बालक का कृष्ण के रूप में श्रृंगार किया और रासलीला आरंभ कर दी। जैसे रासलीला आरंभ हो गई, वो दोनों बालक और कन्या, जो बालक था लड़का था और लड़की, दोनों अंतर्धान हो गए, मतलब गायब हो गए। तो अंतर्धान हो गए, तो फिर जब ये लीला समाप्त हुई तो घमंड परेशान हो गए, अरे मैं भी माता पिता को क्या जवाब दूंगा कि आपके बालक को ड्रामा में लिया था और बालक गायब हो गया। बड़े दुखी हुए वो। इसका कारण ये था कि उस मुकुट और चंद्रिका के रूप में ठाकुर जी ने और राधा रानी ने उनके अंदर प्रवेश किया और वो धाम में चले गए अपने लीला करते करते। तो बड़े दुखी हो गए वो। तो घमंड देवाचार्य ने फिर तपस्या की, फिर भजन किया, फिर प्रार्थना की, फिर वापस स्वप्न में आकर उन्होंने इन दो बालकों को उनको सुपुर्द कर दिया और इन्होंने अपने माता पिता को उनको दे दिया। ऐसी लीला यहाँ पर, इसलिए आप दर्शन करेंगे तो उसमें एक बड़ा एक फोटोग्राफ है। उस दोनों फोटोग्राफ के अंदर वो घमंड आचार्य ठाकुर जी से मुकुट ले रहे हैं, ऐसा दर्शन है, और उनके नीचे छोटे से एक बालक और कन्या खड़ी है जिनको उन्होंने श्रृंगार करके रास में प्रवेश कराया था। तो यहाँ पर भगवान के रास का आरंभ होने के पहले राधा रानी और कृष्ण भगवान को कंकण पहनाया गया था, इसलिए वो कंकण कुंड भी यहाँ पर विराजमान। यहाँ पर और एक वस्तु है, हिंडोला, यानी कि ठाकुर जी यहाँ पर झूलन लीला भी करते हैं। आप थोड़ा आगे जाएंगे तो बड़ा आपको हिंडोला मिलेगा, झूलन, वहाँ बैठकर झूलन के उत्सव में भागवत जी हिंडोला लीला करते हैं। और जो मुकुट घमंड देव आचार्य को प्राप्त हुआ था, वो मुकुट का शिला भी आगे गांव में एक पुराने खंडे जैसा घर है, उसके अंदर उस शिला का दर्शन भी प्राप्त होता है। तो ऐसा ये बहुत ही उत्कट और अद्भुत वन है जिसके अंदर चंपकलता देवी विराजमान है और सुंदर सुंदर लीला यहाँ पर होती रहती है। विशेष करके रास लीला और झूलन लीला का महत्व इस गांव में। श्री चंपकलता देवी की जय हो, श्री कृष्ण भगवान की जय, जय श्री राधे। ऐसे भी कहा गया है कि इस गांव में, इस वन में रास मंडल का निर्माण ललिता देवी ने खुद किया था। इसको रास मंडल ललिता देवी का उत्सव प्रिय स्थान है कि पूरी तरह से कदम खंडी है। यहाँ पर ललिता सरोवर भी है जहाँ पर ललिता ने दर्शन दिया था और सरोवर प्रकट किया था। और यहाँ का जो हिंडोला है, मतलब जो झूलन स्थली है, वो स्वयं ब्रह्मा जी ने निर्माण किया है। स्वयं ब्रह्मा हैज क्रिएटेड दैट झूलन हिंडोला। यहाँ पर ललिता देवी ने भगवान के साथ में ग्रंथि बंधन किया था। भद्रा देवी का विवाह सब सखियों ने मिलकर यहाँ पर किया गया था। और रास बिहारी जी के मुकुट का दर्शन भी गांव में है। और आखिरी में ये बात बताना चाहूँगा कि ब्रज में ठाकुर जी की इच्छा से रास लीला का जो कल्चर है उसको पुनरुज्जीवित किया गया। रास लीला का मतलब होता है कि ठाकुर जी की लीलाओं का नाटिकाएँ प्रस्तुत करते हैं। रासलीला का मतलब ये नहीं कि हर समय नृत्य का ही दर्शन होता है। रासलीला का मतलब है एक स्टेज पर राधा कृष्ण को सजाते हैं, बाकी सब सखियाँ भी आती हैं और ठाकुर जी की विविध लीलाओं का दर्शन कराते हैं। तो वो जो पद्धति है, आधुनिक जो पद्धति अभी आजकल में प्रचलित है, जो प्राचीन भी है, वो घमंडदेव आचार्य ने अपने कला से, अपने भक्ति से, प्रेम से प्रकट किया गया था। तो वो आधुनिक वर्तमान रासलीला पद्धति के प्रवर्तक भी हैं घमंड देवाचार्य। ब्रज में बड़े प्रसिद्ध हैं वो। और सभी यहाँ के संतजन जो है घमंड देवाचार्य को बड़े सम्मान से उनका उल्लेख करते हैं, क्योंकि ब्रज में जितने सिद्ध महात्मा हुए हैं उनमें से घमंड देवाचार्य एक हैं। श्री करहवन की जय हो, जय जय श्री राधे श्याम। तो अभी आप लोग सब लोग यहाँ से निकल कर पहले दर्शन कीजिए हिंडोला का, और उसके बाद में द्वारकाधीश का दर्शन कीजिए, उसके बाद थोड़ा बाहर जाइए और कंकण कुंड में आचमन कीजिए। वो बहुत पवित्र स्थली है, इसका आचमन करने से भगवान की राधा रानी की कृपा प्राप्त होती है। प्रार्थना कीजिए सब लोग और फिर बस में जाकर बैठिए। फिर हम तीसरे सखे के गांव में जाएंगे, विशाखा देवी के गांव में, जिसका नाम क्या है, आंजनौक, अंजनपुर। हरे कृष्णा।